हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और ग्रंथ राष्ट्रमद भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय 9 वृत्रासुर का आविर्भाव श्लोक संख्या 25। य एक ईशो निज माययानः, य एक ईशो निज माययानः, ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्, ससर्ज येनानु सृजाम विश्वम्, वयम् न यस्यापि पुरः समीहतः, वयम् न यस्यापि पुरः समीहतः, पश्याम लिंगं पृथगीशमानिनः, पश्याम लिंगं पृथगीशमानिनः। य एक ईशो निज माययानः, ससर्ज येनानुसृजाम विश्वम्, वयम् न यस्यापि पुरः समीहतः, पश्याम लिंगं पृथगीशमानिनः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह वह जो एकः एक ईशः नियंता निज मायया अपनी दिव्य शक्ति से नहा हमको ससर्ज उत्पन्न किया, येन जिनकी कृपा से अनुसृजाम हम भी सृष्टि करते हैं, विश्वम ब्रह्मांड, वयम हम न नहीं, यस्य जिसका, अपि यद्यपि पुरः हमारे समक्ष, समीहतः कार्य करने वालों वाले को, पश्याम देखते, लिंगम रूप, पृथक भिन्न, ईशा नियंता रूप में, मानिनः अपने बारे में सोचते हुए। तो अभी पिछले दो श्लोक के अनुवाद तात्पर्य नहीं है तो उनका अनुवाद पढ़ देते हैं और उसके बाद इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। और ये जो प्रसंग चल रहा है ये अभी त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का आविर्भाव प्रकट हुए और देवतागण जो है उनको देख के बहुत निराश हो गए और उसके बाद सब भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान से सभी देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 21, 22, 23 और 24 और आज 25वें, इसमें देवतागण जो हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी रक्षा करें। और अगले दो श्लोक तक और यानी 26, 27 एक साथ हैं, इन दोनों में भी प्रार्थना चलेगी और फिर भगवान देवतागण के सामने प्रकट होंगे तो और भगवान फिर उनको जो है वचन कहेंगे। तो पिछले 23वें श्लोक में देवतागण तात्पर्य कि ये प्रार्थना कर रहे हैं। पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सींग में समग्र ब्रह्मांड रूपी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। उनकी कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने को बचाया था। वे ही मत्स्य अवतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करें। तो देवतागण एक एग्जाम्पल देने कि भगवान जो है सभी की रक्षा करते हैं तो और पहले भी पूर्व काल में सत्यव्रत नामक राजा की उन्होंने रक्षा की थी मत्स्य अवतार लेकर के, तो वैसे ही हमारी रक्षा करें। फिर एक और उदाहरण देंगे वो अभी वो दे रहे हैं 24 पिछले श्लोक में 24वें श्लोक में। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल में भयानक लहरें उठने लगी। इनसे ऐसा भयानक शोर हुआ कि श्री ब्रह्मा अपने कमल आसन से प्रलय जल में प्रायः गिर ही पड़े किंतु भगवान की सहायता से बच गए। उसी प्रकार हम भी इस भयावह स्थिति से अपनी रक्षा की भगवान से आशा करते हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमारी रक्षा करें। और आज का अनुवाद इस प्रकार से है, जिन श्री भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की है और जिनकी कृपा से हम इस विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, मैं निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान है किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसीलिए देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में सोचते हैं। तो पिछले दो में तो भगवान किस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं, और उससे पिछले श्लोक में ये बता रहे हैं कि रक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति भगवान के अलावा किसी और का आश्रय ग्रहण करता है तो बहुत बड़ा मूर्ख है। वो ऐसा मूर्ख है जो कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करना चाहता है, ऐसा उदाहरण दिया था। तो और इस बार ही बता रहे हैं जो इसके अंदर देवतागण जो है भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो अपनी प्रार्थना में ये बोल रहे हैं कि भगवान ने हमारी सृष्टि की है, लॉर्ड इज द सुप्रीम क्रिएटर, कि भगवान ने अपनी एक्सटर्नल पोटेंसी बहिरंगा शक्ति से हम सबकी सभी देवतागणों की और इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि की है। दूसरा कह रहे हैं तो यह एक ईशो निज माया या न, तो अपनी निज माया से अपनी शक्ति से भगवान ने जो है हमारे ससर्ज अर्थात उन्होंने उत्पन्न किया है हम सबको। और फिर बता रहे येन अनुसृजाम विश्वम, और उनकी कृपा से ही जो है हम इस विश्व की का सृजन कर पाते हैं। आगे जो कुछ भी हम क्रिएट कर पा रहे हैं देवतागण, तो कह रहे हैं वो भी उन्हीं की कृपा से हम कर पाते हैं। आगे बता रहे वयम न यस्यापि पुरः समीहतः, पुरः समीहत अर्थात हमारे समक्ष हैं वो हर समय, निरंतर हमारे समक्ष भगवान हैं। किस रूप में? परमात्मा रूप में। लेकिन कह रहे हैं हम उन्हें देख नहीं पाते। वयम न यस्यापि पुरः समीहत पश्याम लिंगम, हम उनको देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथक ईश मानिनः, हम सब अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र रूप के स्वतंत्र ईश्वर के रूप में सोचते हैं कि वी आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स। तो इस भावना के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते हैं। तो तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो तात्पर्य इस प्रकार से है, बहुत अच्छा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का और हमारे जीवन के अंदर बहुत व्यावहारिक ये इससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर यह बताया गया है कि बद्ध जीव श्री भगवान का साक्षात दर्शन क्यों नहीं कर पाता। तो हम सब में से अधिकांश तो बद्ध जीव ही हैं और भगवान के दर्शन हमें नहीं हो पाते हैं, ऑफकोर्स विग्रह रूप में होते हैं। तो यहां यह बताया गया है कि आखिर क्या है, भगवान हमारे सामने हैं, हमारे हृदय में हैं, लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो पाते। यद्यपि भगवान हमारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण या भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं और मानव समाज में नेता या राजा के रूप में रहते भी हैं, किंतु बद्ध जीव उन्हें नहीं समझ पाता। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, मूढ़ लोग श्री भगवान को सामान्य पुरुष मानकर उनका उपहास करते हैं। अत्यंत तुच्छ होकर भी हम अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं और सोचते हैं कि हम भी विश्व की रचना कर सकते हैं अथवा दूसरा ईश्वर उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण है कि हम श्री भगवान को न तो देख सकते हैं और न समझ सकते हैं। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कथन है, लिंगमेव पश्यामः कदाचित् अभिमानस्तु देवानामपि सन्निव प्रायः कालेषु नास्तेव तारतम्येन सोपितु। हम सभी विभिन्न अंश बद्ध हैं किंतु हम अपने को ईश्वर समझते हैं, इसीलिए हम न तो समझ पाते हैं कि ईश्वर कौन है, न ही उनका आमने सामने दर्शन कर पाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बैठे सभी भक्तों और विशेषकर वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए इसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। य एक ईशो निजमायया न ससर्ज येनानुसृजाम विश्वम वयम न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम लिंगम पृथगीशमानिनः, जिन श्री भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसीलिए देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में सोचते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही विशेष है और मेरे हृदय के भी एक प्रश्न को इस श्लोक के तात्पर्य ने उत्तर दिया जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू डिवोटीज कि ये श्लोक मेरे को सेवा के लिए दिया। तो इसमें इस श्लोक में कुछ आई विल ट्राई टू डिस्कस थ्री पॉइंट्स। सबसे पहले कि भगवान क्या है, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तो भगवान क्या है। और दूसरे ये परमात्मा जो भगवान का रूप है उनके क्या अलग अलग कर्तव्य हैं हमारे जीवात्मा हर जीवों के विशेषकर हृदय में जो विद्यमान हैं, तो क्या क्या वो कार्य करते हैं, क्या क्या अवतार हैं। और तीसरा पॉइंट कि हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते और कैसे देख सकते हैं, फिर अगर नहीं देख पाते हैं तो कैसे देख सकते हैं। एंड आई विल कंक्लूड विथ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि हम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। पहला पॉइंट है हम सबसे पहले वी आर फॉर्चुनेट कि हम सौभाग्यशाली हैं। विल डिस्कस कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम जो हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हम परम सौभाग्यशाली या परम दुर्भाग्यशाली बन सकते हैं। तो विल डिस्कस दिस पॉइंट कि किस प्रकार इस श्लोक से हम जो है अपने सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों की चर्चा करते हुए कैसे हम परम सौभाग्य परम दुर्भाग्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान जो है जिसको हम गॉड बोलते हैं, अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकों में देखेंगे तो प्रभुपाद जी विशेषतया गॉड वर्ड वहां यूज करते हैं जहां पे नास्तिकवाद का खंडन करना होता है। खासकर इंग्लिश के बुक्स में तो बहुत विशेष हो जाएगा, हिंदी में तो भगवान परम भगवान एक ही शब्द इस्तेमाल करें, बट प्रॉपर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन मोस्टली ही विल यूज द वर्ड गॉड व्हेन इट इज रिलेशन टू एथिस्ट, अदरवाइज ही यूज द वर्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड या फिर सुप्रीम लॉर्ड विच इज मोर इंटीमेट, तो या फिर कृष्णा ही डायरेक्टली यूज द वर्ड कृष्णा, ऐसे करके भगवान का नाम लिखेंगे। तो भगवान जो है सबसे पहले यहां पर देवतागण बता रहे हैं कि सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, या एक ईश्वर निजमाय यान ससर्ज ये नान सदाम विश्वम, कि भगवान ने बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की है। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म सेना में प्रार्थना करते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, कि कृष्ण जो है सभी कारणों के कारण है। ठाकुर भक्ति विनोद भी अपने एक भजन बताते हैं तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छा विश्व सृजन संहार, कि आप सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं ब्रजेंद्र कुमार, हे ब्रज के महाराज नंद के पुत्र, तुम्हार इच्छाएं विश्व सृजन संहार, कि आपकी इच्छा से इस विश्व का सृजन और संहार होता है। तो भगवान जो है सर्व कारण कारणम है, सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। कृष्ण खुद भी इसका ऐलान गीता में करते हैं, बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सभीयों का भोक्ता हूं और सब कुछ मुझसे ही निकलता है। तो भगवान जो है द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, यानी हम सबके भी इस पूरे भौतिक आध्यात्मिक जितना भी हम देख रहे हैं उसके आदि कारण भगवान है, श्री भगवान है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी जीवात्माओं के और सभी वस्तुओं के जो स्रोत हैं वो भगवान है। दूसरा, भगवान है सुप्रीम प्रोपराइटर, कृष्ण गीता में बताते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। अरे कृष्ण जो है भगवान कह रहे हैं भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, कि सभी लोगों का ईश्वर जो नियत प्रोपराइटर या स्वामी कह सकते हैं कि मालिक या ओनर जो हूं वो मैं हूं। हम अपने जीवन में कह सकते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, या ये मेरा शरीर है, ये मेरा पेन है, या सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सारे मकानों का मालिक हूं, है कि नहीं, कोई भी ये नहीं कह सकता। और वैसे देखा जाए कि अगर हम ये भी बोलें कि हम अपने अपने शरीर के या अपने घर के मालिक हैं, तो ये भी कहना एक गलत स्टेटमेंट है। वास्तविकता में हम कुछ समय के लिए आते हैं, उस जगह को कंट्रोल करते हैं और मालिक बनते हैं और फिर चले जाते हैं। वो जगह वैसे की वैसी रहती है, या फिर हम रहते हैं वो जगह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी वस्तु, जगह नहीं, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, तो हम, हो सकता है हम अपने आप को प्रोप्राइटर माने, हम सेकेंडरी प्रोप्राइटर हैं और कृष्ण जो हैं या भगवान जो हैं वो प्राइमरी प्रोप्राइटर हैं। भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वर, हम सभी वस्तुओं के स्वामी हम हैं। तभी इसलिए भक्त जो अपने घर में विग्रह रखते हैं या जो भक्त मंदिर में रहते हैं, तो वो जानते हैं कि मंदिर या घर के स्वामी कौन है, श्री भगवान है। जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिकारण भगवान की जय, सर्वलोक महेश्वरम श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो है सभी वस्तुओं और व्यक्तियों के स्वामी जो हैं भगवान हैं, और ये भावना रखेंगे यदि कोई, तो भगवान गीता में क्या करें, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, नियंता हैं या प्रोप्राइटर हैं। तीसरा कह रहे हैं भगवान आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। कृष्ण जो हैं, कई बार हम सोच सकते हैं कि हम बहुत बड़े कंट्रोलर हैं, और हो सकता है हमें यह भी लगे कि हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है कि नहीं। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है या बुढ़ापा आ जाता है, तो वो व्यक्ति शरीर से वो कार्य नहीं कर सकते, चाहे उनकी इच्छा भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि भगवान से अब उनको अनुमति नहीं है, भगवान से शक्ति प्रदान नहीं हो पा रही है। तो हम, हो सकता है अपने आप को नियंता समझे, नियंत्रक समझे, ईश्वर समझे, कंट्रोलर समझे, लेकिन सब वस्तुएं हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। वी से इन इंग्लिश ऑल्सो सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल में आउट ऑफ माई कंट्रोल, नॉट डिपेंड ऑन कृष्णा। तो ऐसे ही देवतागण जो हैं, हो सकता है यहां बहुत बड़े कंट्रोलर हों, लेकिन जब वृत्रासुर का आविर्भाव हुआ तो उनका कंट्रोल जो है वो भी उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है, भगवान की शरण, सुप्रीम कंट्रोल की शरण ले रहे हैं। और तीसरा है, चौथा पॉइंट, भगवान इज सुप्रीम इंजॉयर। कृष्ण कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि सभी यज्ञों का स्वामी कौन हूं, मैं हूं। कृष्णा इज वेरी क्लेवर, भगवान हमारी मेंटालिटी को जानते हैं कि हम भगवान से सब द्वेष करते हैं और ईश्वर बनना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं जो हूं सभी यज्ञों का या सभी कार्यों का भोक्ता हूं, आई एम द सुप्रीम इंजॉयर, आई एम द सुप्रीम प्रोप्राइटर। लेकिन इतना कोई सुन के किसी को शायद भगवान से बहुत द्वेष होने लगेगा, अच्छा भगवान आप ही सब कुछ हो तो मैं कुछ क्या नहीं हूं क्या, है कि नहीं। तो कृष्ण कहते नहीं, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं आप सबका क्या हूं, परम हितैषी हूं, परम मित्र हूं। और यदि कोई ये जान जाता है तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यदि कोई ये जान जाए कि भगवान सभी वस्तुओं का स्वामी है, मैं भोक्ता नहीं हूं, भोग्य हूं, भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे परम हितैषी मित्र हैं, ये तीन यदि हम जान लें तो हमें शांति प्राप्त हो सकती है। तो कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इज सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम इंजॉयर एंड सुप्रीम कंट्रोलर। ये ज्ञान को जानने मात्र, ये भगवान का टेक्निकल ज्ञान है। ऐसा है कि अगर ये कैरेक्टर से किसी में है तो भगवान कह सकता है, ऐसा है। हालांकि कृष्ण तो सुप्रीम कंट्रोलर है नहीं, पिछले कुछ दिन पहले इस माधवानंद पुर आए थे तो वही बता रहे थे कि कृष्ण जो है गोप्या दलित वही कृतागसी दामत आवाज, कि कृष्ण मकाल यशोदा मैया की छड़ी से भाग रहे हैं, एंड ही इज कंट्रोल्ड बाय द लव ऑफ ब्रजवासीज। तो लेकिन गॉड को बोले तो गॉड हैज टू हैव दीज फीचर्स लाइक दैट। और आगे जो सेकंड पॉइंट यहां बता रहे हैं देवतागण, कि भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो गीता में अलग अलग जगह पे भगवान अलग अलग रूप, अलग रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ही परमात्मा के कार्य बताते हैं। तो 18 अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, ये श्लोक हमारे पीछे दोहरा सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। तो बता रहे भगवान, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। तो परमात्मा जो है हर व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में अर्थात शरीर में सवारी की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, कि हमारे पास जो शरीर रूपी हमें यंत्र मिला है और हम जो जीवात्मा है शरीर के अंदर बैठे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान जो है सर्वभूतानां सभी जीवों के हृदय में बैठे हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रोड़ानि मायया और सभी जीवों को अपने कर्मों के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार घुमा रहे हैं 84 लाख योनियों के अंदर। तो कृष्ण का ये पहला है, ही इज अ डायरेक्टर ऑफ द वॉन्डरिंग्स ऑफ लिविंग एंटिटी, कि जो जीव भटक रहे हैं भौतिक जगत के अंदर कृष्ण उनके क्या है कह सकते हैं कि नियंत्रक हैं या उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि कौन किस योनि में अपने कर्मों के और इच्छाओं के अनुसार जो है किस किस योनि में किस प्रकार से वो जाएंगे। तो पहला भगवान ये है, इज द डायरेक्टर ऑफ द वॉन्डरिंग्स ऑफ द लिविंग एंटिटी। दूसरा कृष्ण बताते हैं गीता के अंदर कि परमात्मा क्या करते हैं, जो जीव की इच्छा शक्ति है उसे पूरा करते हैं। किसी भी कार्य के पीछे हमें लगता है कि हम करता हैं, पर वास्तविकता में तीन डूअर्स हैं, तीन कार्य करने वाले हैं। पहला तो है जीवात्मा। जीवात्मा क्या कार्य करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा शक्ति। और दूसरा परमात्मा क्या करते हैं, उसे परमात्मा उसे सैंक्शन करते हैं। और तीसरा कौन है, प्रकृति, भौतिक प्रकृति, जो सुविधा प्रदान करती है उस कार्य को करने के लिए भगवान की अनुमति के ऊपर। तो कृष्ण गीता में बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरिवर्तते, कि ये जो भौतिक प्रकृति मेरे अधीन है। और जीव जब इच्छा शक्ति करता है, जीव तो बहुत सारी इच्छाएं करते हैं और परमात्मा को सैंक्शन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं उसके कर्मों के अनुसार। और जब सैंक्शन करते हैं कि हाँ ये कार्य होना चाहिए, तो भौतिक प्रकृति सुविधाएं प्रदान करती है। तो किसी भी कार्य के पीछे इस प्रकार से तीन डूअर्स हैं। तीसरा जो है, भगवान किसी भी जीवात्मा का सुख और दुख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं कि उसके कर्मों के अनुसार एक जीव को कितना सुख मिलेगा और कितना दुख मिलेगा। परमात्मा सैंक्शंस दैट, हालांकि वो कंट्रोल नहीं करते हैं लेकिन सैंक्शन करते हैं। जैसे कि कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी हम सबने देखा होगा, हमें कुछ बीमारी हो जाती है, किसी का पेट खराब हो जाता है या मुंह में छाले हो जाते हैं विशेषकर, और कई बार हमें लगता है कि हम उसे ठीक कराएंगे, दवाई लेंगे, लेकिन लगता है चलो थोड़ी देर बाद दवाई ले लेंगे, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, है कि नहीं। छाले जैसी कोई बीमारी होती है, छोटी सी बीमारी होती है, और 5-7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद में छाले अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, है कि नहीं। तो और 8-10 दिन हमें कष्ट बहुत होता है लेकिन संभव वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कई बार दवाई लेते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होते। तो जो हमें कष्ट मिलना होता है वो तो मिलता ही है कि नहीं। कई बार ऐसे हमें जो सुख मिलना होता है हम प्रयास नहीं करते, अपने आप मिल जाता है कि नहीं। लोगों के लिए सुख होगा कि उन्हें बस के लिए वेट नहीं करना पड़ा या मेट्रो ट्रेन में सीट अपने आप ही मिल गई, है कि नहीं। लोगों के लिए यही सुख है एक प्रकार से कि हाँ भी चलो आज सीट मिल गई बस के अंदर या ट्रेन के अंदर बैठने के लिए। तो कृष्ण बिना मांगे सुख और दुख आता ही है। ऐसी एक कहानी है कि परमात्मा किस बार सैंक्शन करते हैं। तो ऐसे एक युवक था और अपने जीवन के अंदर बहुत हताश हो गया वो, हो सकता है आजकल का ही कोई युवक होगा तो जो है तो अपने जीवन से बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था, ही हैज नो मीनिंग टू हिज लाइफ। निश्चित उसने क्या सोचा, सुसाइड कर लेता हूं मैं जाके। तो सुसाइड किया, उन्हें क्या क्या किया जाए सुसाइड करने के लिए। तो वो पहाड़ी पे गए और कहा यहां से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। और जब वो कूदने वाले थे तो क्या हुआ, नीचे जो उस पहाड़ी के एक लेक थी, सरोवर था, और वहां पे उस देश की राजकुमारियों की सखियां स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी तो वहां पे एक मगरमच्छ आ गया, और जब मगरमच्छ आया तो उस जो राजकुमारी थी उसको दबोचने लगा, और तभी अचानक से व्यक्ति ऊपर से गिरा। तो जब वो ऊंचाई से गिरा बिल्कुल, तो पानी का बहुत जोर से जो है स्प्लैश हुआ और क्रोकोडाइल के भाग गया क्रोकोडाइल। और सबने सोचा कि अरे वाह, ये वो हीरो है जिसने बचाया राजकुमारी को, है कि नहीं। और राजकुमारी भी भागी वहां से, और बाद में जब देश के राजा को पता लगा कि इस व्यक्ति ने मेरी बेटी को बचाया है, तो उसने अपना आधा किंगडम भी उसे दे दिया, आधा राज्य भी, और उसकी शादी भी राजकुमारी से हो गई, है कि नहीं। तो व्यक्ति कितना भी कभी कभी प्रयास करे लेकिन सुख नहीं मिलता, लेकिन जब परमात्मा चाहते हैं कि सुख मिले तो बच्चा बच भी नहीं सकता वो, है कि नहीं। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, ऐसा ही है। यदि तो भगवान जो है सैंक्शन करते हैं कि इसको क्या सुख और क्या दुख मिलने वाला है। हम अपने जीवन में चाहे हताश हो जाए कोई फायदा नहीं है, और चाहे बहुत सुखी प्रयास करते रहे खूब, अब मिलने वाला, अब मिलने वाला है। जब सुख और दुख आना होगा वो आएगा ही आएगा, हम बच नहीं सकते उससे। तभी कृष्ण स्टार्टिंग में गीता कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करो। हालांकि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन ये कृष्ण की शिक्षा है गीता के अंदर, टॉलरेट करो, सुख और दुख दोनों को जो सहन करो। इसके बाद चौथा जो परमात्मा हमारे हृदय में कार्य करते हैं, कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं 13वें अध्याय के अंदर, ये बहुत बढ़िया अच्छा श्लोक है, परमात्मा कार्य बताते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। बता रहे हैं भगवान, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, सर्वलोक महेश्वरम, फिर से यही वर्ड भगवान यूज करते हैं, भोक्ता महेश्वरः। कह रहे हैं इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाते हैं। कह रहे हैं कि एक जीवात्मा हो सकता है इस भ्रम के अंदर हो कि मैं जो हूं, कृष्ण जो परमात्मा बता रहे हैं यहां पे, उपद्रष्टा अनुमंता च, कि भगवान क्या है, अनुमति देने वाले हैं, अनुमंता च, दूसरा है भगवान साक्षी हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, हम इच्छाएं करते हैं उसके भगवान साक्षी हैं और अनुमति देने वाले भगवान हैं। लेकिन भगवान जो हमारी इच्छाओं को देख के अनुमति देते हैं, हम पे फोर्स नहीं करते। कोई पूछ सकता है कि अरे भाई अगर भगवान को मालूम है कि हम भगवान की शरणागत रह के खुश हो सकते हैं तो भगवान हमें जबरदस्ती शरणागत क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम की ही इच्छा करते हैं, वो हमसे डिक्टेटरशिप वाला जो है संबंध नहीं चाहते कि भगवान एक तानाशाह के रूप में हो और हमको जो है डिक्टेट करें कि ऐसा करो वैसा करो। तो कृष्ण ऐसा नहीं चाहते, कृष्ण चाहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम हमसे उत्पन्न हो। तो भगवान बता रहे हैं कि उपद्रष्टा और अनुमंता, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान के साक्षी हैं। आई थिंक कठोपनिषद में एग्जाम्पल भी आता है, एक पेड़ में बैठे हुए दो पक्षी, एक तो है कर्ता पक्षी या भोक्ता पक्षी और दूसरा क्या है, साक्षी पक्षी। तो भगवान जो है वो साक्षी हैं जो हमारे सारे कार्यों को नोट कर रहे हैं। सोचिए कितना भगवान ने, परमात्मा का कार्य कितना विचित्र है, ये सोच के हमें परमात्मा के प्रति एप्रिसिएशन होना चाहिए कि भगवान इतने अनगिनत जीवों के अनगिनत योनियों में जन्म लेते हैं, जो है हम लोग 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं और ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों लाखों अनगिनत जीव हैं और भगवान हर किसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके हर जीवन में उसने क्या क्या कार्य किया। अब सोचिए परमात्मा जो है कितने महान है इस प्रकार से, और हमने 10,000 साल पहले या 5,000 योनियों पूर्व कुछ कार्य किया था उसका परिणाम अब मिलेगा। कृष्ण को यह सब अरेंज करना पड़ता है हमारे लिए। सोचिए परमात्मा जो है कितना अधिक एक प्रकार से कृपालु हैं और कितना अधिक मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए इस प्रकार से। तो वी शुड वेरी थैंकफुल कि परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है और इस प्रकार से हमें गाइड कर रहे हैं। और बता रहे हैं महेश्वर भगवान परम स्वामी है, ये पहले हमने डिस्कस किया सुप्रीम प्रोपराइटर। और इस पॉइंट पे एक और चर्चा हम कर सकते हैं कि हमको लगे कि हम अपने शरीर के स्वामी हैं, हमको एक अज्ञानता हो सकती है कि हम शरीर के स्वामी हैं, पर वास्तविकता में हम हैं नहीं। कैसे नहीं है, हमें अपने शरीर के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है। हम सब बाल कटाते हैं फिर बढ़ जाते हैं, हम अभी प्रसाद पाएंगे थोड़ी देर बाद में, उस प्रसाद का क्या होगा, कितना वो खून में बनेगा, आगे मलमूत्र में बनेगा, हमें कोई जानकारी नहीं होती अंदर क्या हो रहा है, कोई हमें जानकारी नहीं होती इस बारे में, तो हम प्रोपराइटर नहीं है। लेकिन कई बार ये सिद्धांत बताते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा ठीक है अब हम आपका मर्डर कर देते हैं तो आप डरते क्यों, यदि आप हमारी को पिटाई करता तो हमें डर लगता है कि नहीं? तो बोले आप डरते क्यों, अगर भगवान ही भगवान परम स्वामी हैं और भगवान महेश्वर हैं और आप स्वामी नहीं हो तो आपको डर क्यों लगता है कि नहीं? आप बताइए कि सर उत्तर है कि नहीं, पर हम तो शरीर के स्वामी नहीं है तो हमें डर क्यों लगता है कोई हमारी अगर पिटाई करेगा या हमें कोई संकट आएगा, तो डर लगना सही है या गलत है? गलत है कि सही है? हमें अपना बचाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन यह सोच के नहीं कि मैं शरीर हूं मैं मर जाऊंगा इसलिए नहीं। पर जिस प्रकार से मान लीजिए किसी ने किराए का मकान ले रखा हो और कोई उसके मकान में आग लगाने की कोशिश करे तो वो क्या करेगा? वो व्यक्ति वो बोलेगा मेरा मकान तो है नहीं, मैं तो भाड़े पे आया हूं, कोई बात नहीं, चलने दो मकान का, ऐसा तो होने वाला नहीं है, है कि नहीं? वो भी चाहे जिसका मकान है, जो मकान का मालिक है, चाहे उसका मकान हो और जो किराएदार हैं वो सेकेंडरी प्रोपराइटर हो, लेकिन फिर मकान की रक्षा तो करेंगे। वैसे ये भगवान ने हमको शरीर दिया है और हम एक किराएदार के समान हैं जो शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो इसलिए शरीर की रक्षा करना तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये सोच कर कि मैं शरीर हूं वो ठीक नहीं है, है कि नहीं, कि परमात्मा को दिया गया शरीर है, इसकी रक्षा करना, इसके बचा के भगवान की सेवा करना, ये तो हमारा कर्तव्य है, ऐसा है ना। और इसके बाद में एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता है। लोग बोलते हैं देखिए प्रभु जी, परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम कैसे हिल सकते हैं, है कि नहीं। आप लोगों को बोलेंगे प्रभु जी आप मंदिर आइए, बोले जब भगवान की इच्छा होगी तब मंदिर आएंगे, जब भगवान बुलाएगा तब हम आएंगे, है कि नहीं। ये तो हम सुन सुना होगा, इसका कोई उत्तर दे सकते हैं कोई? इसका बहुत सरल सा उत्तर है, बोले भगवान ने तो 5000 साल पहले गीता में बुलाया है आपको, आप 5000 साल लेट हो गए हो। कृष्ण कह रहे सर्व धनवान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है कि नहीं। तो लोग ऐसा कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं तो माध्यम हूं केवल, वो बुरा कार्य करेंगे और गीता की फिलोसॉफी को इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं, गलत काम करेंगे, चोरी धंधा चोरी चकारी करेंगे, झूठ बोलेंगे और कहेंगे प्रभु जी इसकी इच्छा तो भगवान ने सैंक्शन किया ना इसे, है कि नहीं। तो इस परमात्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर गुड एंड बैड एक्ट्स। तो ऐसे ही एक बारी हुआ कि एक व्यक्ति था, उसने मर्डर किया था, तो पुलिस ने पकड़ लिया उसे और अदालत में लेके गए, कोर्ट में लेके गए, और जब पूरा केस सुनाई हुआ तो जज जो है जजमेंट देने वाला था, जो है फैसला निर्णय सुनाने वाला था कि भाई इसको टू बी हैंग टिल डेथ। तो उसने बोला कि आप जजमेंट सुनाने से पहले मेरे साथ एक अपराधी और भी है, पहले उसको सजा मिलनी चाहिए। जज ने बोला ठीक है बोलो क्या बात है। तो बोले कि जो वो अपराधी है वो भगवान है, उससे मेरे को ऐसा करने क्यों दिया, परमात्मा ने सैंक्शन क्यों किया, परमात्मा सैंक्शन किया इसीलिए तो, भगवान की मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता, है कि नहीं। तो आप पहले भगवान को पनिशमेंट दो, मेरे को क्यों दे रहे हो। तो जो है ऐसा उसने बोला, तो बोला ये भगवान की मर्जी से हो रहा है कि मेरा कलम चलने वाला है और मैं नतीजा देने वाला हूं, है कि नहीं। जज कहता है कि देखो मैं भी माध्यम हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही कहने वाला है टू बी हैंग टिल डेथ, इसलिए मैं भी नहीं रोक सकता। तो कई बार लोग ऐसे फिलोसॉफी को यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वी आर पनिश्ड एंड रिवॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर, हम अपनी इच्छा से ही हमें सजा मिलती है और जो है सुख या दुख मिलते हैं हमारी इच्छा से, हमारे कार्यों से, हमारे पास वो इच्छा शक्ति है जीव के पास में। तो परमात्मा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको ब्लेम करना शुरू कर दें। वो केवल उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता भोक्ता महेश्वर है, कर्ता नहीं है, लेकिन वो केवल सैंक्शन करते हैं, अनुमंता है, ऐसा है। तो ये बता रहे हैं इस श्लोक में देवतागण कि भगवान ने बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की, उनकी कृपा से हम विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो बद्ध जीव की बद्धता का ये एक कारण है कि वह भूल जाता है कि मैं भगवान की कृपा से ही कर पा रहा हूं। तो हमारे जीवन में हमें कोई सफलता प्राप्त होती है, विफलता प्राप्त होती है तो भगवान को ब्लेम करते हैं, सफलता प्राप्त होती है हम क्रेडिट ले लेते हैं कि मेरी वजह से हुआ। तो ये एक बद्ध जीव का लक्षण है हमेशा, ऐसा है। और हम सबके अंदर किसी ना किसी मात्रा में जरूर होगा, सूक्ष्म या सूक्ष्म शरीर पे, अच्छा हुआ तो मेरी वजह से हुआ, बुरा हुआ तो मैंने प्रयास किया लेकिन भगवान की इच्छा, है कि नहीं। तो इस श्लोक ने यह बताया है जिनकी कृपा से हम विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, जो भक्त हैं वो ये हमेशा जानते हैं कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो पा रहा है और मैं भी जो कर पा रहा हूं भगवान की कृपा से ही कर पा रहा हूं, मेरे पास अपने कोई अपनी शक्ति नहीं है। जैसे पीछे माधवनपुर भी आए थे तो उन्होंने वो कथा बताई थी कि सभी देवतागण जो हैं वो भगवान की भय या आशा से जो है उनकी पूजा करते हैं, और जब वो कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उनको भी अपने अंदर अहंकार अभिमान होने लगता है कि मैंने कर लिया, लेकिन और कृष्ण तो सभी भक्तों का, लेकिन भगवान के भक्त हैं तो कृष्ण सभी भक्तों का अभिमान तोड़ने का प्रयास करते तोड़ते हैं हमेशा। तो ऐसे एक बार हुआ कि वो देव दानव से युद्ध करके आए, विजयी होके आए सब, तो सब जो है डींगे हाँक रहे थे बहुत बड़ी, सूर्य कह रहे थे कि मैंने ऐसे, मेरी वजह से ऐसे हुआ, अग्नि बोल रहे थे मेरी वजह से ऐसे हुआ, यह कथा भी माधवनपुर ने बताया था पीछे। तो भगवान एक अक्षय के रूप में आए, उन्होंने बोला अच्छा क्या बात है भाई, ऐसे ये अग्नि आए तो उनको बोला ये तीन घास का तिनका आप जला सकते हो इसे, ये तो कुछ भी नहीं है, है कि नहीं। और अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति डाली लेकिन जला नहीं पाए, तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, वो हट गए। फिर वायुदेव आए, बोले इसको उड़ा सकते हो, बोले ये तिनका, हंसे वो पहले तो, और फिर उड़ाया, फिर उड़ा नहीं, पूरी शक्ति लगा दी वो भी नहीं उड़ा। ऐसे करके सभी देवतागण आए और सभी पराजित हो गए। तो उनको समझ में आया कि अगर हम युद्ध में विजयी हुए हैं तो इसीलिए हुए हैं क्योंकि भगवान हमारे पीछे हैं, हमारी स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं है। फिर देवतागण आगे बता रहे हैं निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो जो एक मुक्त जीव है या जो भगवान का भक्त है वो भगवान को हर क्षण हर वस्तु में देख पाता है, लेकिन जो बद्ध जीव है वो नहीं देख पाता, और देवतागण अपनी इस बद्धता को यहाँ एक्नॉलेज कर रहे हैं, वह नम्रता के कारण कह रहे हैं कि हम उनके रूप को नहीं देख पाते। तो केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के रूप को हर समय देख सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ती यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान को हम देख सकते हैं जिसके पास केवल प्रेम की जो आंखें हैं, दोज हूज आईज आर नॉट एट द सेल ऑफ लव ऑफ गॉड हैंड, जिनके पास प्रेम है वो तो भगवान को हर क्षण देख सकते हैं। लेकिन जो बाकी भक्त हैं, जो भय से, आशा से, कर्तव्य बुद्धि से भगवान की उपासना करते हैं, वो नहीं देख पाते। तो देवतागणों भी जो है शुद्ध भक्त नहीं है, वो सकाम भक्त हैं, मिश्रित भक्त हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान को हमेशा नहीं देख पाते। और क्यों नहीं देख पाते उसका भी कारण बता रहे हैं, पृथक ईशमानिनः, क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में सोचते हैं। तो ये हम सब बद्ध जीवों की बीमारी है कि हम अपने आप को भगवान से स्वतंत्र और भगवान से जो है स्वतंत्र समझते हैं और अपने आप को ईश्वर मानते हैं। और प्रभुपाद बहुत हैवी स्टेटमेंट लिख रहे हैं भागवतम के अंदर, तात्पर्य में कह रहे हैं, अत्यंत तुच्छ होकर भी हम अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं और सोचते हैं कि हम भी विश्व की रचना कर सकते हैं अथवा दूसरा ईश्वर उत्पन्न कर सकते हैं। सुहाजी बहुत कह रहे हैं कि हम या तो विश्व की रचना कर सकते हैं या एक और ईश्वर उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अज्ञानता है और यही कारण है भगवान को ना देख सकते हैं और ना समझ सकते हैं। जो है कि जो अपने आप को तुच्छ मानता है कि मैं भगवान का दास हूं, केवल वही भगवान के कार्यकलाप, भगवान के नाम रूप गुणों को समझ सकता है। जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से वशीभूत है वो नहीं समझ सकता। और जो ये समझता है कि मैं भगवान हूं या मैं बहुत महान हूं, मैं और क्या मतलब है, वन हु वांट्स टू बिकम गॉड इज दैट ही इज सुप्रीम इंजॉयर प्रोप्राइटर कंट्रोलर। जो भी हमें सोचते हैं कि मैं इस वस्तु का स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं या इंजॉयर हूं या फिर मैं इसका कंट्रोलर हूं, तो मतलब हम भगवान बनने की चेष्टा कर रहे हैं। और हम देखेंगे हर क्षण अगर एनालाइज करेंगे तो ये भावना हमारे अंदर रहती रहती है किसी न किसी प्रकार से। और बड़े आश्चर्य की बात है, देखिए हम भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने खड़े हैं और भगवान का एक गुण देखिए, भगवान हमको अच्छे से जानते हैं, हमारे हृदय के अंदर भी और बाहर भी भगवान सबको जानते ही हैं। और भगवान ये भी जानते हैं कि हम ईश्वर बनना चाहते हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं। और भगवान से अपने आप को इंडिपेंडेंट भी समझते हैं, हम पृथक भी समझते हैं, और उसके बावजूद हम भगवान के सामने भी आते हैं और कृष्ण स्टिल टॉलरेट्स अस। सोचिए आई जस्ट थिंकिंग कि हमारे सामने कोई व्यक्ति हो मान लीजिए और हमसे बहुत ईर्ष्यालु हो, हमसे द्वेष करता हो और हमारी मान लीजिए जो भी हमारी कुर्सी है या पद है या हमारे पास संपत्ति है या कुछ है उसको हथियाना चाहता हो, तो हम क्या करेंगे, है ना। वी आर वेरी नैरो माइंडेड, हम उसे दुश्मनी करेंगे। बट कृष्णा इज सो वंडरफुल दैट वो ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति में क्या दुर्भावनाएं हैं, वो ये देखते हैं इसके बावजूद ही मेरे पास आया, इतना सब होने के बावजूद ही मेरे पास आया ये, सो आई विल प्यूरिफाई हिम, दैट इज कृष्ण। तो ये जो भागवतम कोई अभक्तों के लिए नहीं बनी वास्तविकता में। निवृत्त तर्शय रूपकीय मानात भव औषधाष्ट्रोत मनो विरामा, कि भागवतम जो है ऑफकोर्स नए जो अभक्त हैं उनके लिए भी, जो भक्त हैं और जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और जो शुद्ध अवस्था पहुंच सबके लिए है भागवतम। तो ये जो भागवतम ग्रंथ है हम सब भक्तों के लिए बना है। तो हमारे अंदर भी टेंडेंसी होती है बहुत बारी कि हम भगवान से जाके यही प्रार्थना करें, भगवान मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन में या मेरे नियंत्रक बनने में या मेरी स्वामी बनने में, भोक्ता बनने में मदद करो। आप सोचिए कई बार हमारी वैसे भावना रहती है कि भगवान मैं नियंता बन जाऊं, मेरे हाथ से कुछ दिक्कत हो रही है, ये है, आप प्लीज मदद करो मदद करो मदद करो। तो देवताओं वाली वो मेंटालिटी हमारे अंदर भी रहती है। तो कृष्ण बहुत कृपालु है, तो हमारा सौभाग्य ये है कि हम भगवान के शरण में आ पा रहे हैं, भगवान के पास आए। तो अधिकांश लोग क्या है अपना ही प्रयास करे जा रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है, बाकी लोग तो ऐसे प्रयास कर रहे हैं अलग अलग चीजों का, अलग अलग लोगों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, कि जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो विफल होंगे ही होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे लोग तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं ऐसे कहा जाए तो। हमारा सौभाग्य ये है कि इतने सा दुर्भावना है, हमारे अंदर भावनाएं होते हुए भी हम किसी ना किसी प्रकार से भक्तों की कृपा से भगवान की शरण में आए, और हमारे पास एक होप है कि हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, है कि नहीं, कि अब जो है वो समुद्र, हमने भगवान के पद कमल की शरण ग्रहण करी है तो ये हम समुद्र पार ही नहीं करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि कृष्ण गीता में बताते हैं, नहीं ब्रह्मा जी बता रहे हैं दशम स्कंद के अंदर, समाश्रितम ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। बोले जिन भक्तों ने सम आश्रितम ये पद पल्लव प्लवम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो उनके लिए क्या होता है, जो पूरा भव सागर है भवाम बुधिर वत्स पदम, ये पूरा भव सागर कैसा हो जाता है, जैसा एक बछड़े के खुर के अंदर जितना पानी आता है उसमें कोई क्या स्विमिंग करेगा, कोई क्या उसको तैरेगा या पार करेगा, उसको तो ऐसे कोई भी बच्चा भी पार कर जाएगा। तो इसीलिए जिससे हमने भगवान के, हम किसी भी कारण से, गलती से या फोर्स से, आशा से, भय से, कर्तव्य से, जैसे मर्जी भगवान की शरण में आ गए, लेकिन अभी हम आ गए भगवान की शरण, भगवान के पास में आए हैं और हमें कुछ हद तक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम भगवान के सेवक हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दुर्भाग्य क्या है कि इतना सब जानकारी होते हुए भी, देखिए बाहर के लोग तो आप कह सकते हैं कि उनका दुर्भाग्य है क्योंकि उनका नॉलेज ही नहीं है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें ज्ञान प्राप्त होते हुए भी हमारे अंदर वो टेंडेंसी रहे इस प्रकार की कि भगवान बनने की या इंजॉयर बनने की या ये मानना कि मैं भगवान हूं, कंट्रोलर हूं। तो पीछे जो भक्ति थी दामोदर स्वामी महाराज आए थे तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, अर्जुना वॉज अ मिजरेबल स्कॉलर। देखिए यदि कोई ज्ञान के अंदर है तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, अगर सच्चे ज्ञान के अंदर है, ज्ञान में है और दुखी है ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, है कि नहीं। कोई व्यक्ति ज्ञानी है और कह रहा है मैं दुखी हूं, है कि नहीं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं पांचवें अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर, एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है ये, कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण उसके अंदर कह रहे हैं कि मतलब वो इंटरफेयर नहीं करते जीव के, उसके अंदर सुख और दुख जो है जीव के इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। तो मिजरेबल स्कॉलर, उसको ज्ञान है कि भगवान का अंश फिर भी दुखी है, और नहीं भगवान कह रहे हैं कि सारे जो दुख का कारण है वो क्या है, अज्ञानता, अज्ञानता सभी दुख के कारण है। और कोई व्यक्ति पंडितों की तरह बातें करें, अभी हमें से भी कई लोगों से हम बहुत प्रचार करें, लोगों को बोले चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, है ना, और हम गीता का पूरा उपदेश भी सुनाएं, लेकिन फिर भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में दुखी हों, तो हमारी भी अर्जुन स्थिति बहुत बारी होती है, वी ऑल्सो बिकम मिजरेबल स्कॉलर्स, है कि नहीं। तो दैट इज अवर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि हमें भक्ति में ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी कई बार हमारी बद्ध अवस्था के कारण, हमारी बद्धता के कारण, हमारी कंडीशनिंग के कारण हम जो हैं भगवान फिर भी बनना चाहते हैं, या भगवान के पास भी आते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छाएं पूरी कर दो, वो इच्छाएं पूरी कर दो, या कुछ इस प्रकार से, तो हमारी वो देवतागण वाली स्थिति हो जाती है कई बारी। तो ये हमारी दुर्भाग्यशाली स्थिति है, और कई बारी लोग भगवान के शरण में आते भी हैं, जैसे जो है कई और भी मंदिर हैं, और कई बार लोग बोलेंगे सिद्ध बाबा है, सिद्ध मंदिर है ये, क्यों, भगवान यहां पे सारी प्रार्थना सुनते हैं और इच्छाएं पूरी करते हैं, है कि नहीं। तो लोग जाते हैं भगवान से इच्छाएं पूरी करने के लिए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तनों से भी जुड़ पाए, भगवान से तो जुड़े ही, लेकिन भगवान से भी अधिक कृपालु, एक तो देवी देवताओं से नहीं जुड़े, भगवान से जुड़े, और उससे ही बड़ी बात है कि चैतन्य महाप्रभु से हम जुड़ पाए श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है संकीर्तन मूवमेंट में जुड़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आता है, हो बताशो अपचतो गरीयान यद जिभाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य नामों का जप करता है वो हमें जान लेना चाहिए कि उसने सारे जप तप सारे मंत्र तंत्र जो भी है पिछले जन्म में, सारे तपस्या सब कुछ पिछले जन्म में वो कर चुके हैं ऑलरेडी, तभी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं जो है, चाहे अभी कैसे भी हो लेकिन हरे कृष्ण जप कर पा रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि वह बहुत ही महान व्यक्ति है, ऐसा है। तो ये हमारा विशेष है, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि हमारे अंदर में हृदय में जितनी भी जो गंदगी है वो सब साफ हो सकती है भक्तों के संगत में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से या संकीर्तन आंदोलन से, कितनी भी हमारे शरीर के अंदर हमारे मन में समस्याएं हैं सब ठीक हो सकती हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हमें भक्तों के संग में आके हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, जप करते हुए नृत्य करना है और प्रसाद पाना है, बस है कि नहीं। अब देखिए किस प्रकार से, बहुत साइंटिफिक भी है। सोचिए जब लोग आप मंदिर में भी आते हैं, जो भक्त रेगुलरली आप देखेंगे, जब बिल्कुल नए लोग आते हैं तो क्या करते हैं, वो सीधा आएंगे मंदिर में, सीधा घुस जाएंगे बस, और भगवान के सामने बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ी विनम्रता आने लगेगी तो क्या करते हैं, पास में आएंगे, भगवान सामने कम से हाथ जोड़ेंगे, है कि नहीं, सी ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने लगते हैं, हाथ जोड़ेंगे ऐसे करके, फिर तो देखिए थोड़ी विनम्रता आई ऐसे करके, है कि नहीं। फिर और मंदिर आना शुरू करेंगे तो आते थे गेट पे थोड़ा झुक करके जो है ऐसा घुसेंगे, भाई मंदिर आई है और मैं थोड़ा छोटा हूं, भगवान बड़े हैं, भगवान का मंदिर आई है, साधारण जगह नहीं है, तो आना शुरू करेंगे, तो बोलेंगे नहीं भगवान महान है, कुछ भेंट लेके जाने चाहिए। उसके बाद चलो भगवान के सामने ऐसा हाथ जोड़ना शुरू करेंगे, सर झुकाना शुरू करेंगे, है कि नहीं, सी इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमिलिटी। उसके बाद वो क्या करेंगे, भगवान के हाथ में आके माथा टेकेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद पंचांग प्रणाम करेंगे, उसके बाद अष्टांग प्रणाम करेंगे। सोचिए ये तो बहुत नम्रता चाहिए उसके लिए, किसी व्यक्ति को पूरा दंडवत करने के लिए, भगवान का भगवान आपके शरणागत हूं मैं। और यहां पे पहले दिन भक्त आता है, उसे भगवान के सामने पकड़ के सब भक्त नचा देते हैं। अभी डांस करने के लिए सोचिए, कोई इगोस्टिक से डांस कर सकता है या हम्बल होकर डांस कर सकता है, उसे थोड़ा ह्यूमिलिटी चाहिए कि भगवान की पसंदा के लिए डांस करने के लिए, है कि नहीं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटिंग फॉल्स ईगो, स्वाभाविक रूप से उसका फॉल्स ईगो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अब हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम भगवान के सामने डांस करें इसको ध्यान रखें। कई बार हम केवल नृत्य कर रहे हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए, तो वो सही नहीं है। तो फिर भगवान वो भी जानते हैं, तो क्या होगा, बाकी लोग हमसे प्रभावित हो जाएंगे लेकिन भगवान नहीं होंगे, कृष्ण तो हनुमंता है ही है, देन विल मिस द गोल। तो ये हमारी दुर्भाग्यशाली स्थिति है। तो हम कैसे सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बन सकते हैं, अगर इफ यू नेग्लेक्ट द प्रोसेस, हमारे इतना सौभाग्य है इस प्रोसेस में आए हैं, हम भक्तों का संगत प्राप्त हुआ है, प्रमाणिक गुरु की शरण हमें प्राप्त हुई है, बिल्कुल बोनाफाइड शॉर्टकट प्रोसेस हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब हम यहां पे यदि ढील देंगे अगर हम, तो हम परम दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे, हम उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली, बिकॉज अनफॉर्चुनेट इज अ पर्सन हु डोंट हैव नॉलेज, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान नहीं है, भगवान कौन है मैं कौन हूं। मोर अनफॉर्चुनेट इज हु हैज नॉलेज बट डजंट फॉलो द लॉर्ड, वो इस प्रोसेस कृष्णा कॉन्शियस फॉलो कर रहे, पता है उसे भक्त है इस्कॉन मंदिर है लेकिन फॉलो नहीं करता है। सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो प्रोसेस में आता है, कुछ दिन पालन करता है और छोड़ के चले जाता है, इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इज जो प्रोसेस में रहता है फिर भी पालन नहीं करता, फिर भी यहां पर ढीला ढाला रहता है, बिल्कुल इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन जो भक्ति के अलावा, भक्ति में आने के बाद भी नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाते और भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन। इसलिए क्योंकि उसके हाथ में इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अभी हम एक व्यक्ति को जो है उसको राजा ने बोला कि ये जो तुम्हारा ये जंगल है, ये जंगल तुम्हारा है, और उस जंगल में उसने कहा बहुत अच्छा हो गया, तो इस जंगल की जो लकड़ी है इससे मैं क्या करूंगा, जला के खाना पकाऊंगा, है ना। तो ऐसे रोज जंगल काटता रहता था और जंगल एक दिन समाप्त होने लगा सारा का सारा, तो कुछ ही पेड़, एक दो तीन चार पेड़ बचे थे। तो एक व्यक्ति जो है वहीं जंगल में आया, तो उसने देखा भाई ये लकड़ी है, तो उसने बोला ये लकड़ी तुम्हारे पास कैसे, बोले ये लकड़ी क्यों, बोले मैं इसके जो हूं तुम्हें 1000 रुपये देता हूं, इतनी सी लकड़ी के पीस के 1000 रुपये देता हूं। वो जो व्यक्ति था वो सोचने लगा 1000 रुपये पागल हो गए हो क्या, उसने बोला नहीं तुम्हें मालूम नहीं ये कौन सी लकड़ी है, बोले नहीं, बोले चंदन की लकड़ी है ये, बोले चंदन की लकड़ी है, बोले तुम्हें इसका भाव मालूम है, बोला नहीं, बोले ये इतनी सी 100 ग्राम लकड़ी या जो है 1000 रुपये की है। हाँ सोचिए व्यक्ति का क्या हल हुआ होगा जिसने पूरा जंगल काटा था और जला जला के जो है कि नहीं, पूरा चंदन का जंगल उसके पास में, और अगर कोई व्यक्ति ऐसे उसको जला करके उसका अपना खाना पकाएगा उसे आप क्या बोलेंगे, सौभाग्यशाली तो कोई नहीं बोलेगा उसे, परम दुर्भाग्यशाली बोलेंगे, नहीं था तो ठीक था कम से कम, है कि नहीं। लेकिन होने के बाद उसे जला दिया, तो यही है मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शून्या विषखाई न। तो इसीलिए हमारे पास पूरा बहुत बढ़िया प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि भगवान हालांकि ईश है, ईश निज माया सुप्रीम कंट्रोलर है, बट वो प्रोसेस है जिनके द्वारा हम भगवान को भी कंट्रोल में ला सकते हैं, हमारे पास वो प्रोसेस है। प्रभुपाद जी कहते हैं वी डोंट वांट टू बिकम गॉड, वी वांट टू बिकम फादर ऑफ गॉड। हम भगवान नहीं बनना चाहते, भगवान के ही बाप बनना चाहते हैं, है कि नहीं? ये हमारा प्रोसेस है कि क्योंकि भक्ति के मार्ग माध्यम से भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो दैट इज अ प्रोसेस। हम इतना जो है महत्वपूर्ण और इतना प्रभावशाली शक्तिशाली प्रोसेस है, लेकिन यदि हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा जो हम परम दुर्भाग्यशाली बन सकते हैं, लेकिन यदि हम फॉलो करेंगे देन इट्स वेरी सिंपल। और कपिल देव भगवान जो है अपनी शिक्षा में बताते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। बोल रहे हैं कि ठीक है, सब लोग हम सबके अंदर जो है इस भौतिक जगत से आसक्ति है, हमें कुछ नहीं करना, उस आसक्ति को केवल ट्रांसफर करना है किसमें? भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर। हमें उस आसक्ति को छोड़ना भी नहीं है, वो कह रहे केवल ट्रांसफर करना है जो हमारी भौतिक जीवन में आसक्ति है उससे उस आध्यात्मिक जीवन के अंदर, अपने गुरु और भक्तों के अंदर। और हमारे पास वो प्रोसेस है, हमारे पास वो भक्त हैं, ऐसे शुद्ध भक्त भी मौजूद हैं जिनके अंदर हम अपनी आसक्ति को उनकी सेवा कर सकते हैं और उनसे जो है अपना जेन्युइन वैष्णव रिलेशन बना करके भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन यदि हम उन भक्तों की संगत नेग्लेक्ट करेंगे देन वी आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट इस प्रकार से। और भक्ति जो है इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, कंट्रोलिंग द सुप्रीम कंट्रोल बाय सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस लव एंड सर्विस। भक्ति प्रेम का प्रोसेस है, ये सेल्फलेस भगवान से प्रेम करने का प्रोसेस है और सेवा के माध्यम सेवा का प्रोसेस है। और ये जो है प्रोसेस शुरू कैसे होता है और चलता कैसे है, बहुत सिंपल। हर क्षण भगवान और उनके प्रतिनिधि के प्रति जो है कॉन्स्टेंट सरेंडर के द्वारा, कि भगवान को भी हम ऐसा नहीं है कि सीधे अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम भगवान को उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ही, उनके भक्तों के द्वारा ही जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए और भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण ग्रहण करने चाहिए और उनके आज्ञा का जैनवन रूप से फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है निश्चित रूप से, और हम में से हर भक्त स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन स्ट्रगल से हमें घबराना नहीं चाहिए। ऐसा है, स्ट्रगल तो एंडेवर हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में हमारा जीवन बहुत अच्छा है। भौतिकतावादी लोगों के पास तो कोई होप नहीं है, आगे कोई आशा नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन यदि हम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के प्रति शरण ग्रहण करेंगे तो हमारा जो आगे का जीवन है वो बहुत ब्राइट है। इट इज फॉर श्योर गारंटीड गारंटीड गारंटीड। ये इस प्रोसेस का है, और तब हम भगवान को देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। कृष्ण की कृपा से ही हम उन्हें देख पाएंगे समझ पाएंगे, लेकिन कृष्ण अपने हमें कैसे रिवील करेंगे? जब वो हमारा सिंसियर प्रयास देखेंगे, उनकी कृपा से ही हम उनको समझ पाएंगे और देख सकते हैं। ग्रंथराष्ट्रीय भागवतम की। तो किन्हीं भक्तों को एक आधा प्रश्न या कोई कॉमेंट्स हो, कोई कॉमेंट्स को टिप्पणी या कोई प्रश्न?
जब श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को शुरू किया यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी शुरू शुरू में इंडिया के अंदर, और मतलब पूरा टाइम उनका इसी में जाता था या ट्रांसलेशन ऑफ शास्त्रार्थ में जाता था, मगर फिर भी वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। काफी स्ट्रगल करने के बावजूद भी उन्होंने सारे मतलब सब तरह से पॉलिटिकल लेवल पे भी, महात्मा गांधी से भी कांटेक्ट करके, मगर किसी तरह से भी सक्सेस नहीं मिली। मगर एंड में जब वो यूएसए में गए तब उनको सक्सेस मिली। हाउ डू यू एक्सप्लेन कि पहले उनको सक्सेस क्यों नहीं मिली डिस्पाइट द सेम एफर्ट्स एंड सेम थिंग व्हाट ही वाज डूइंग हियर एंड ही गॉट सक्सेस व्हेन ही वेंट टू यूएसए?
ओके, हाउ इट इज रिलेटेड टू टुडेज क्लास, हाउ इट इज रिलेटेड टू टुडेज क्लास, मतलब
It is related to whatever all you said.
Krishna is supreme proprietor, enjoy pehle bhi kar sakte the abhi
ke everything, okay. Everything whatever you said, it is my observation,
yes,
after
sir.
Hearing from you today that Krishna is the controller, Krishna is everything, Krishna is the bhokta, Krishna is everything, so why what special he did when he went to USA and he got the success, and in spite of all the efforts what he did here, he did not get that success.
तो प्रभु जी का प्रश्न, धन्यवाद भाई आपका प्रश्न. प्रभु जी का प्रश्न है कि शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे और उससे पहले भारत में इतने 40 साल तक उन्होंने जो है संघर्ष किया और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. बैक टू गॉड मैगजीन उन्होंने पब्लिश करने का प्रयास किया, शास्त्रों का ट्रांसलेशन करना भी किया, लीग ऑफ ड्यूटीज बनाया, पॉलिटिकल महात्मा गांधी इत्यादि वगैरह से मिले, सब कुछ. तो पूरा उन्होंने जो है प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, बाह्य रूप से सफल नहीं हुए वो. तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब अमेरिका गए तो जो है उन्हें सफलता प्राप्त हुई? I'll try to give whatever from my little understanding is there. कि मैं प्रयास करूंगा इसमें जो भी मेरा क्षमता के अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकूं. एक तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर की एक आज्ञा ये थी, वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, कि आप पाश्चात्य जगत में जाओ और प्रचार करो. तो प्रभुपाद ने जब, और प्रभुपाद की हृदय से एक इच्छा थी कि भारत में प्रचार हो. प्रभुपाद हैड कन्विक्शन, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्मजार. बोले कि जब भारतीय लोग प्रचार करेंगे तो वास्तविकता में सफल होगा, बिकॉज इंडियंस के पास नेचुरली. तो प्रभुपाद का एक आचार्यों के अंदर भी कुछ कुछ हल्का फुल्का भेद हो सकता है, नॉट द पर्पस बट सम डिफरेंस इन मूड एंड अंडरस्टैंडिंग, मूड के अंदर कह सकते हैं. तो जब उन्होंने भारत में अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हुए, लेकिन जैसे विदेश में गए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाहते थे कि विदेश में प्रचार हो, उन्हें एक साल के स्ट्रगल के बाद ही बहुत सफलता प्राप्त होना शुरू हो गई. तो प्रभुपाद जी तो पूरा विश्वास तभी भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था. दैट इज वन ऑफ द वेज विच वी कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो. कि और उसके बाद प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद मेड स्पीचिंग फ्रंट इन इंडिया. प्रभुपाद ने भारत को बहुत महत्वपूर्ण फ्रंट बनाया प्रचार के लिए, एक बाह्य कारण ऐसा कह सकते हैं इसे भी. दूसरा एक जो हमें शिक्षा मिलती है प्रभुपाद जी को, अगर मान लीजिए प्रभुपाद जी प्रचार करना शुरू करते और तुरंत ही सफलता मिल जाती तो शायद प्रभुपाद उतने ग्लोरियस नहीं रहते. और अभी हम कहते हैं एबे जश घुषुक त्रिभुवन, कि प्रभुपाद जो आचार्य हैं अपने आचरण से हमें सिखाते हैं. तो हो सकता है हमें भी अपने प्रचार कार्य में, भक्ति के कार्य में, या किसी प्रबंधन के कार्य में, भगवान की सेवा में भी सफलता बहुत जल्दी ना मिले. जैसे एक कहावत है, अभी बोनाफाइड नहीं है मालूम नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऐसा बोनाफाइड तो नहीं होगी लेकिन जो भी है, दैट कृष्णा सीज अवर एफर्ट्स, ऐसे करके. तो कृष्ण चाहते थे कि नहीं, ये विदेशों से शुरू हो इस प्रकार से. अगर मान लीजिए प्रभुपाद भारतीयों को ही भक्त बना देते तो भी प्रभुपाद की उतनी महिमा नहीं रहती, इस कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस की उतनी महिमा शायद नहीं रहती, क्योंकि भारतीयों में तो कल्चर था भी वैसे के वैसे. अब प्रभुपाद ने बिल्कुल निकृष्ट लोगों को, जीवों को जाके, मनुष्यों को जाके जब भक्त बनाया तो इससे महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की महिमा कितनी अधिक जो है गौरवशाली हुई, ऐसे करके. विविट कृष्णा प्लान, जैसे जगाई मधाई का जब नित्यानंद को उद्धार किया तो यही भावना थी कि यदि ऐसे पापी लोगों का उद्धार हो जाएगा तो महाप्रभु का नाम और अधिक फैलेगा, है कि नहीं? सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ दिस प्रोसेस. दिस ऑल्सो अनदर वे वी कैन अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद जी जो किया वो इससे पहले किसी ने नहीं किया, कि हजारों जगाइयों मधाइयों का उद्धार कर दिया इस प्रकार से. सो दैट इज वन वे कि कृष्णा वॉन्टेड, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे प्रामाणिक आचार्य और शुद्ध भक्त होने के कारण कृष्णा गुणगान हो, चैतन्य महाप्रभु गुणगान हो, और भगवान का चाहते हैं प्रभुपाद जी गुणगान हो. तो म्यूचुअली दोनों ने ऐसे जो है भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जो बाहर जाएं तभी वो सफलता प्राप्त हो उन्हें, इस प्रकार से. दैट इज अनदर वे वी कैन अंडरस्टैंड. और थर्ड थिंग इज एज फॉर अवर प्रैक्टिकल लाइफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी शुड कंटिन्यू टू स्ट्रगल. कि प्रभुपाद जी को जब सफलता प्राप्त हुई, प्रभुपाद ने स्ट्रगल करना फिर भी नहीं छोड़ा. जब प्रभुपाद जी डेथ बेड पे भी थे तभी प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद योर डिसाइपल्स हैव ग्रोन अप, नाउ दे कैन डू ट्रांसलेशन एंड यू कैन टेक रेस्ट. प्रभुपाद सेड डोंट टेक अवे फ्रॉम मी द प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा. यदि हमें सफलता मिल भी जाए तो हमें गर्वित नहीं होना. प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं करता हूं, कभी नहीं सोचा कि मैं ईश मानी न हूं, वो कभी भगवान को भूले नहीं. तो हमें देखना चाहिए सफलता हमें मिलेगी. अभी हम इस्कॉन, अभी तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इस्कॉन के नाम से हम किधर भी जाते हैं, अभी किसी भी रिमोट स्टेशन पे भी जाते हैं, मेट्रो में, ट्रेन में, किधर भी लोग पहचानते हैं इस्कॉन, तिलक लगाया तो समझे इस्कॉन, इतना है. और कई बार तो लोग रास्ते में डोनेशन देते हैं, आप इस्कॉन से हो आप मंदिर में चढ़ा देना. तो इतना प्रभुपाद जी की वजह से आज हमें भी अगर कुछ क्रेडिट मिल रहा है बिकॉज वी एसोसिएटेड विद प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी का नाम है, इस्कॉन का नाम है पीछे, इसीलिए लोग जो है जो है हमें इतना आदर देते हैं, ऐसा करके. तो हालांकि हमें ऐसा सुविधाएं प्राप्त हो रही है बट वी शुड नो प्रभुपाद के मूड और मिशन को हमें कैरी करते रहना चाहिए, उसमें दिक्कत तो आएंगी आएंगी, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट कि कृष्णा इज अ डूअर. इस करके तो प्रभुपाद ने वो स्ट्रगल कभी नहीं छोड़ा, इस प्रचार आगे करते रहना, बढ़ाते रहना. तो ये मैं तीन अंडरस्टैंड.